بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیف نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है pastoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज मंगलवार है, मेहर महीने की 20, रबीउल अव्वल की 5 और अक्टूबर की 12 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके बाद कार्यक्रम अनमोल बातें आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। अनमोल बातें के बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम और राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको एक साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, रोहिंग्या त्रासदी। श्रोताओ, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब आप सुनिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने कहा है कि परमाणु वार्ता में दूसरे पक्षों का जो रवैया होगा, तेहरान भी उसी हिसाब से कदम उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेहरान में बहुत जल्द अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बैठक होने वाली है। हिजबुल्ला लेबनान के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में गृह युद्ध करवाना चाहता है। भारत में बहुचर्चित लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी की है। और अब आप मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान के दौरे पर आए स्विट्जरलैंड के संसद सभापति से मुलाकात में पारस्परिक सहयोग, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत के दौरान परमाणु वार्ता के संदर्भ में कहा कि दूसरे पक्षों का जो रवैया होगा, ईरान भी उसी हिसाब से कदम उठाएगा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरान और स्विट्जरलैंड के अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड से ईरान के व्यापक और मजबूत संबंध खास महत्व रखते हैं। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच छोटी और मझोली कंपनियों के आपसी सहयोग को विस्तार देने की बड़ी क्षमताएं हैं और दोनों देशों के संयुक्त आयोग की नियमित रूप से बैठकें भी जरूरी हैं। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हालात की वजह से शरणार्थियों की समस्या, मादक पदार्थ और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। उनका कहना था कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अतः अफगानिस्तान के लोगों की तत्काल मदद की जानी चाहिए। ईरान पहले से ही इस संदर्भ में काम कर रहा है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने वियना में परमाणु वार्ता के संदर्भ में कहा कि इस बारे में सरकार बहुत जल्द अंतिम फैसला लेगी और आगे की वार्ता में हम दूसरे पक्षों के रवैये के हिसाब से कदम उठाएंगे। स्विट्जरलैंड के संसद सभापति आंद्रियास एईब ने अपनी ईरान यात्रा पर खुशी जाहिर की और ईरानी अधिकारियों से अपनी मुलाकातों को सार्थक बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का ईरान ने बहुत ख्याल रखा और अफगानिस्तान की जनता के लिए ईरान की सहायता सराहनीय है। स्विट्जरलैंड के संसद सभापति का कहना था कि वार्ता के पक्षों के दृष्टिकोणों को एक दूसरे के करीब लाने में प्रभावी भूमिका निभाने में
स्विट्जरलैंड की दिलचस्पी है।
ईरान की इस्लामिक क्रांति संरक्षक फोर्स सिपाही पासदारान इंकलाब के ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल अब्बास दिलफुरशान ने कहा है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी बहुत सी आतंकी गतिविधियां इसलिए रोक दी हैं कि ईरान ने इलाके में इसराइली नेटवर्क के मुख्य तत्वों को कुचल दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार देते हुए सिपाही पासदारान के कमांडर ने कई महत्वपूर्ण विषयों का जायजा लिया। अब्बास दिलफुरशान ने कहा कि इसराइल आज पूरी तरह हमारे घेरे में है। वो कुछ आर्थिक समूहों के रूप में हमारे पड़ोसी देशों में ईरान विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि इलाके के राष्ट्रों के भीतर ईरान की जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई भी राष्ट्र ईरान के खिलाफ कोई हरकत करने की अनुमति उसे नहीं देगा। जनरल नील फुरशान ने इलाके में अमरीका की उपस्थिति की समाप्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि अमरीका ने दो मुख्य लक्ष्यों के तहत इस इलाके पर सैनिक चढ़ाई की थी। एक लक्ष्य अपना अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व कायम रखना और दूसरा लक्ष्य इसराइल की सुरक्षा करना था, लेकिन अमरीका की योजना फेल हो गई जिसकी वजह अमरीका की लगातार रणनीतिक गलतियां थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अमरीका के पतन की प्रक्रिया और भी तेज हो गई।
ईरान के विदेश मंत्रालय में पश्चिमी एशिया के मामलों के डायरेक्टर सैयद रसूल मुसवी ने कहा है कि तेहरान में बहुत जल्द अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी देशों की बैठक होने जा रही है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अफगानिस्तान के हालात को गहराई से समझने के लिए कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं। मुसवी ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य क्षेत्रीय सहयोग और पड़ोसियों से उसके रिश्तों से संभलेगा और बहुत जल्द अफगानिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान तेहरान में एकत्रित होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने भी इस संदर्भ में कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर रूस भी इस बैठक में भाग लेगा।
ईरान के आसमानों की रक्षा करने वाले रक्षकों ने विलायत 1400 नामक संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास का आरंभ या रसूलल्लाह के नारे के साथ आरंभ किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ईरान की सेना ने विलायत 1400 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आरंभ किया है। इस सैन्य अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि ये या रसूलल्लाह के कोडवर्ड से शुरू हुआ है। ईरान की वायुसेना द्वारा शुरू किए गए इस विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों की स्थापना, आधुनिक रडार, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचार प्रणाली और दृश्य निगरानी नेटवर्क रेगिस्तान क्षेत्र में शुरू हुआ।
एक पश्चिमी संचार माध्यम ने जानकार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान और सऊदी अरब समझौते के निकट पहुंच गए हैं और इस समझौते का ऐलान कुछ सप्ताह के भीतर किया जाएगा। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस प्रेस ने एक जानकार सूत्र के हवाले से दावा किया है कि ईरान और सऊदी अरब अपने मध्य तनाव को कम करने और कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने के बिल्कुल करीब हैं। समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस ने जानकार सूत्रों का नाम नहीं बताया और केवल इतना बताया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच क्या वार्ता हुई है। इस कूटनीतिक ने इसकी जानकारी है। इसी प्रकार समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस ने बताया कि ईरान और सऊदी अरब के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित होने वाले हैं और आधिकारिक रूप से अगले कुछ सप्ताह में इसकी घोषणा होगी।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के प्रमुख ने IRIB की विदेश सेवा के प्रमुख के रूप में अहमद नौरोजी को नियुक्त किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक IRIB के प्रमुख डॉ. पैमान जेबेली ने अपने एक आदेश में IRIB की विदेश सेवा के प्रमुख के रूप में अहमद नौरोजी को नियुक्त करते हुए कहा है कि ये संस्था क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता के साथ अपनी बात पहुंचाने और शत्रुओं के षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए एक मंच के रूप में है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक क्रांति के मुख्य उद्देश्यों को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने का भी एक बेहतरीन स्रोत है।
यमन के मारे प्रांत के दक्षिणी भाग में यमनी सेना और स्वयंसेवी फोर्सेस की प्रगति तेज हो गई है और अमरीकी सुरक्षा एजेंसियां कहने लगी हैं कि बहुत जल्द रणनीतिक महत्व रखने वाले इस प्रांत पर अंसारुल्ला का नियंत्रण हो जाएगा, जिसके हाथ में सनआ सरकार है। इन हालात में सऊदी अरब के यमनी घटकों ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तत्काल मारिब में हस्तक्षेप करे। दक्षिणी मारिब में यमन की नेशनल सेल्वेशन सरकार की सेना और सऊदी अरब के घटक यमनी गुट के लड़ाकों के बीच झड़पें हो रही हैं और सऊदी गठबंधन को ये डर सताने लगा है कि मारिब उसके हाथ से पूरी तरह निकल सकता है।
सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा है कि ईरान ने लेबनान संकट के समाधान के लिए अपना पूरा प्रयास किया। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव ने कहा है कि कुछ लोग बैरूत विस्फोट के मामले को राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल रात को सैयद नसरुल्ला ने दिए गए अपने भाषण में बल देकर कहा है कि लेबनान ने संकट के समाधान के लिए अपना पूरा प्रयास किया। इसी प्रकार उन्होंने शुक्रवार को बम विस्फोट की ओर संकेत किया और कहा कि उस दृश्य को देखकर इंसान का दिल दुखी हो जाता है। मैं दूर से अफगानिस्तान के मजलूम परिवारों से सहानुभूति व्यक्त करता हूं, किंतु इससे महत्वपूर्ण यह है कि इस विस्फोट के जिम्मेदारों को दंडित किया जाना चाहिए।
सऊदी अरब की सरकार ने देश के पूर्वी इलाकों में बसने वाले शिया परिवारों से कहा है कि वहाबी मत की शिक्षाओं के अनुसार कब्रिस्तान में कब्रों पर किए गए हर तरह के निर्माण को ध्वस्त किया जाए। सऊदी सरकार ने पूर्वी इलाकों में शियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पहले तो शियों के प्रदर्शनों को बेदर्दी से कुचला गया और अब शिया परिवारों से कहा गया है कि वह कब्रिस्तान में अपने शहीदों की कब्रों सहित सारी कब्रों को जमीन के बराबर कर दें, वरना कब्रों पर मौजूद हर तरह के निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
भारत में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया है जिसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि ये कथित आतंकवाद कई बड़े हमले अंजाम देने की योजना रखता था।
भारत में बहुचर्चित लखीमपुर हिंसा के मामले में मंगलवार को एक और गिरफ्तारी हुई, जबकि इससे पहले पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने मंगलवार सुबह 10 बजे मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया, जबकि आज ही लखीमपुर के तिकुनिया में वाहनों से किसानों को रौंदने के एक अन्य आरोपी शेखर भारती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है।
उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वो अजय सेना बनाएंगे। किम जोंग उन ने उत्तरी कोरिया के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और अमेरिकी धरती पर परमाणु हमले शुरू करने के लिए तैयार किए गए ताकतवर मिसाइलों का जायजा लिया। इस अवसर पर अपने भाषण में किम जोंग उन ने कहा कि उनकी सेना का लक्ष्य दक्षिणी कोरिया नहीं है, इसलिए अब और जंग नहीं होनी चाहिए। कोरिया के आवाम को एक दूसरे के खिलाफ हरगिज नहीं खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर मैं सैयद मीसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई का मानना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की नीति का आधार अध्यात्म और व्यवहार है। इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का मानना है कि वो नीति खतरनाक है जो अध्यात्म और व्यवहार से खाली हो। इस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो नीति थी वो आध्यात्मिक व्यवहार से अलग नहीं थी। वास्तव में हजरत अली अलैहिस्सलाम की नीति का स्रोत सुशील व्यवहार और अध्यात्म है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई का कहना है कि अगर नीति का स्रोत व्यवहार हो तो उसकी सिंचाई अध्यात्म से होती है। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि इस प्रकार की नीति परिपूर्णता का कारण है और ये स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन अगर राजनीति व्यवहार से खाली हो तो उस वक्त राजनीति सत्ता और धन संपत्ति प्राप्त करने का माध्यम होगी। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का मानना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में सरकार का कोई मूल्य नहीं है। वे कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जो सरकार को कबूल किया उसकी वजह लोगों का आग्रह था। हजरत अली अलैहिस्सलाम लोगों के मध्य न्याय स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की बागडोर संभाली। हजरत अली ने लगभग 5 साल तक शासन किया और इस दौरान 3 युद्ध भी करने पड़े। वरिष्ठ नेता कहते हैं, आप प्रसिद्ध किताब नहजुल बलागा को देख सकते हैं, जिससे इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में सरकार का कोई मूल्य नहीं है। एक बार हजरत अली अलैहिस्सलाम अपना जूता सिल रहे थे, उस वक्त इब्ने अब्बास को संबोधित करते हुए उन्होंने दुनिया का मूल्य बताते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया का महत्व मेरी नज़र में उस पानी से भी कम और महत्वहीन है जो छींक के समय बकरी की नाक से निकलता है। यहाँ कोई ये सवाल कर सकता है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में दुनिया का कोई मूल्य व महत्व नहीं था तो उन्होंने क्यों सत्ता कबूल की। इसका जवाब स्वयं हजरत अली अलैहिस्सलाम देते हैं और कहते हैं, सरकार कबूल करने के लिए लोग मेरे पास आए जिससे मुझ पर हुज्जत पूरी हो गई, यानी सरकार कबूल करना हजरत अली अलैहिस्सलाम का दायित्व बन गया, और अगर कबूल ना करते तो महान ईश्वर के समक्ष सरकार कबूल ना करने का क्या तर्क पेश करते। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईश्वर ने विद्वानों के लिए दायित्व निर्धारित कर दिया है कि जब वे ये देखें कि अत्याचारी का पेट भरा है और मजलूम भूखा है तो चुप ना बैठें। एक अन्य स्थान पर हजरत अली फरमाते हैं कि अत्याचारी के विरोधी और पीड़ित के मददगार बन जाओ। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सरकार कबूल की, अन्यथा हजरत अली अलैहिस्सलाम की नज़र में सरकार का कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम तुर्की, ब्रिटेन और भारत से जुड़े अहम मुद्दों की चर्चा करेंगे। तुर्की हालिया कुछ वर्षों से नई नई समस्याओं का सामना कर रहा है। तुर्क सरकार की नीतियों ने भी इन समस्याओं को जन्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट रविश जैदी की जबानी।
तुर्की के लिए वर्ष 2015 सबसे रक्त रंजित साल था। एक वर्ष के दौरान इस देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर इस्तांबुल और अंकारा सहित विभिन्न इलाकों में दर्जनों धमाके हुए, जिसके नतीजे में 400 लोगों की जान गई और 2000 लोग घायल हुए। इन सभी धमाकों की जिम्मेदारी अमरीका और उसके सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए आतंकी संगठन दाइश ने स्वीकार किया था। वही दाइश जो इराक और सीरिया के साथ साथ इस्तांबुल पर भी अपने कथित इस्लामी शासन का झंडा लहराने का सपना देख रहा था। लेकिन क्षेत्र में दाइश के पतन के साथ ही न केवल इराक और सीरिया में बल्कि तुर्की में भी शांति वापस लौट आई। पिछले कुछ वर्षों में फिर से आत्मघाती धमाकों की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन अभी भी दाइश के तत्वों ने तुर्की के शहरों में अपने खुफिया ठिकाने बना रखे हैं। इसी सप्ताह 15 दाइश के आतंकी अंकारा में और 17 आतंकी इस्तांबुल और अन्य शहरों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अभी भी दाइश के आतंकी तुर्की सहित क्षेत्र के कई अन्य देशों में फल फूल रहे हैं, जो एक सवाल है। तुर्की के एक पत्रकार का कहना है कि खेद की बात है कि पिछले वर्षों में तुर्की के सैकड़ों नागरिक दाइश से जा मिले हैं। दाइश अभी भी तुर्की सहित क्षेत्र के अन्य देशों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में प्रयासरत है। तुर्की के गृह मंत्री का कहना है कि हम तुर्की के भीतर लगातार दाइश से जुड़े तत्वों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सुलेमान सोयलू कहते हैं कि साल के आरंभ से अब तक 196 आतंकवादी गतिविधियों की पहचान की गई और उन्हें विफल बनाया गया, जबकि पिछले साल 206 आतंकी कृतियों की पहचान की गई थी और उन्हें निष्प्रभावी बनाया गया था। लेकिन तुर्की में दाइश के निष्प्रभावी होने का असर उसी वक्त देखने को मिलेगा जब तुर्की की सीमा के बाहर भी दाइश निष्प्रभावी हो जाए और उनकी जड़ को समाप्त कर दिया जाए। राजनीतिक टीकाकार नूरुद्दीन शिरीन प्रतिरोधक बलों के कमांडरों की सराहनीय भूमिका के बारे में कहते हैं कि शहीद कासिम सुलेमानी और अन्य शहीदों की आतंकवादी गुटों के मुकाबले में अपूर्णीय भूमिका केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। आज क्षेत्र के सभी देशों की जनता शांति व स्थिरता के स्वाद को इन शहीदों के बलिदान की वजह से महसूस कर रही है। दाइश ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के शिखर के दौरान तुर्की के शहरों को आम लोगों के नरसंहार के स्थान के रूप में बदल दिया था। तुर्की की राजधानी अंकारा का मेट्रो स्टेशन इस देश का सबसे खूनी स्थान है, जहां 13 मार्च 2015 में दो आत्मघाती धमाके ने तुर्की की राजधानी के लोगों को खून से नहला दिया था। जहां 13 मार्च 2016 में अंकारा से IRIB के लिए हमीदे कामिली की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
एक ओर ब्रिटेन की जनता को ईंधन और खाद्य पदार्थों की कमी का सामना है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सैर सपाटे के लिए स्पेन की यात्रा पर हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। पेश है एक रिपोर्ट अख्तर अब्बास की जबानी।
Only the economic uncertainty.
ईंधन की कमी और इससे पैदा होने वाली नाराजगी सहित कुछ चीजों की कमी और महंगाई के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्पेन के मनोरंजन दौरे की वजह से ब्रिटेन के कुछ राजनीतिक और मीडिया हलकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र इस बारे में लिखता है कि देश को संकट का सामना है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही है। COVID-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि और कोरोना से होने वाली लगातार मौतों की वजह से भी लोग सरकार की क्रियाकलापों की आलोचना कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने के भीतर ब्रिटेन में COVID-19 के मरीजों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई, जबकि हालिया एक महीने में लगभग 4,000 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। इस स्थिति ने सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित होने वाले दुनिया के देशों में ब्रिटेन को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया है। अफगानिस्तान में सरकार के क्रियाकलाप और सऊदी अरब को हथियार की बिक्री जारी रहने की वजह से भी लोग सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। मानवाधिकार की एक कार्यकर्ता इस बारे में कहती हैं कि अफगानिस्तान से बेइज्जत होकर हमारे निकलने ने पूरी दुनिया पर यह स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान पर हमले के समय इस देश की जनता से जो वादे किए गए थे उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं किया गया। हमारी सरकार अतीत की घटनाओं से पाठ सीखने के बजाय उन सरकारों को बड़ी संख्या में हथियार और गोले बारूद बेचने में लगी हुई है जो अपनी जनता का मन कर रहे हैं या दूसरे देशों पर हमले कर रहे हैं। हम सरकार के विपरीत शांति और न्याय की मांग करते हैं, न कि जनसंहार की। यूगॉव संस्था की ओर से कराए गए नए सर्वेक्षण में शामिल 53% लोगों का कहना है कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में सही से काम नहीं कर रही है और केवल 26% लोगों का कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार का क्रियाकलाप सफल रहा है। मुश्तबा कासिम जादे, IRIB न्यूज, लंदन।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय प्रधानमंत्री ने लखीमपुर खीरी में कथित रूप से अपने ही एक मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी के नीचे किसानों को कुचलने की निंदा करने के बजाय अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार के मुद्दे को लोग अपने हितों के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानव अधिकार को लेकर पक्षपात पूर्ण रवैये को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मानव अधिकार को राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से देखने से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कुछ घटनाओं में मानव अधिकार उल्लंघन देखते हैं, लेकिन वैसे ही अन्य घटनाओं में इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि मानव अधिकार का उल्लंघन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, कहा कि कुछ लोग मानव अधिकार के नाम पर देश की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। अनेक मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर मानव अधिकार हनन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि इस संदर्भ में सिलेक्टिव व्यवहार जहां लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, वहीं इससे देश की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मानव अधिकारों के प्रति कटिबद्ध रहा है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जिससे 4 किसानों की मौत हो जाती है। यहाँ भी मानव अधिकार को लेकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इस समय ये मुद्दा राजनीतिक स्तर पर छाया हुआ है और किसानों के अतिरिक्त विपक्षी दल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं, जिनका पुत्र इस हमले के आरोपियों में शामिल था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रमुख और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने भी भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वर्ष 2014 में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सत्ता में आई है, उसने निर्धनता को दूर करके मानव अधिकारों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार समलैंगिकों को वह अधिकार मिला जिसका संविधान में उल्लेख है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख और पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि इतिहास हमें माफ नहीं करेगा यदि मानव अधिकारों का बचाव करने वाले राजनीतिक हिंसा की आलोचना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार की आड़ में हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम रोहिंग्या त्रासदी, और उसके बाद सुनेंगे आप आखिरी कार्यक्रम कुरानी किस्से।
रोहिंग्या त्रासदी।
दोस्तों, कार्यक्रम रोहिंग्या त्रासदी की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम म्यांमार की सेना द्वारा इस्लामोफोबिया और चरमपंथी गुटों के गलत इस्तेमाल की समीक्षा करेंगे। अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
म्यांमार की सेना और बौद्ध भिक्षुओं ने पूर्ण योजना के तहत सुनियोजित तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अपने अमानवीय अपराधों को अंजाम दिया और इसके लिए इस्लामोफोबिया का सहारा लिया। हालांकि म्यांमार का आधिकारिक धर्म बौद्ध है, जो किसी भी तरह की हिंसा, यहां तक कि जानवरों के खिलाफ ही क्यों न हो, अनुमति नहीं देता है। रोहिंग्याओं के जातीय सफाये और रखाइन प्रांत से उनके गैरकानूनी निष्कासन में म्यांमार सरकार और सेना अपनी योजना व्यावहारिक बनाने में इसलिए सफल हो गई क्योंकि उन्हें किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने विश्व स्तर पर चल रही इस्लामोफोबिया की लहर का भी लाभ उठाया और इसका इस्तेमाल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया।
म्यांमार की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बहाने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार किया और उनके कत्लेआम को दाइश और अलकायदा जैसे तकफीरी आतंकवादी गुटों और उनसे संबंधित अन्य आतंकवादी गुटों से जोड़ दिया। इसके लिए उसे विश्व समुदाय या इस्लामी जगत की प्रतिक्रिया की भी कोई परवाह नहीं थी। इस बात से अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि म्यांमार सरकार और सेना बौद्ध धार्मिक कट्टरपंथियों के सहयोग से रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार को दुनिया भर में इस्लामोफोबिया की लहर से जोड़ने में सफल रहे। ये ऐसी स्थिति में है कि जब पीड़ित रोहिंग्या मुसलमानों का दाइश और अन्य तकफीरी आतंकवादी गुटों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दाइश का डराने और धमकाने वाला और हिंसात्मक रवैया म्यांमार सेना के व्यवहार से ज्यादा नजदीक है।
ये बात ध्यान योग्य है कि दाइश जैसे आतंकवादी गुटों की आतंकवादी कार्रवाइयां म्यांमार में बौद्ध धर्म के अनुयायियों समेत अन्य धर्मों के मानने वालों की संवेदनशीलता को उभारती हैं और एक तरह से इस्लामोफोबिया को भड़काती हैं।
अमेरिका और यूरोप काफी समय से इस्लामोफोबिया की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और पश्चिमी संचार माध्यम इसका प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में म्यांमार सेना और सरकार कट्टरपंथी धड़ों को दाइश और अलकायदा से जोड़कर उसका खूब प्रचार करते हैं ताकि रोहिंग्याओं के जातीय सफाये का बहाना मिल सके, जबकि वे तथाकथित कट्टरपंथी गुटों और आम नागरिकों में कोई अंतर नहीं करते।
म्यांमार सरकार और सेना के लिए विश्व स्तर पर जारी इस्लामोफोबिया की लहर से समन्वय के बिना इस हद तक रोहिंग्याओं का नरसंहार और निष्कासन एक दूर की कौड़ी थी। इराक और सीरिया में दाइश और अलकायदा की आतंकवादी कार्रवाइयों को पश्चिमी मीडिया ने इतना व्यापक कवरेज दिया कि विश्वभर में आम लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया की भावनाएं उभर आई। इस वातावरण से लाभ उठाकर म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं मुसलमानों का नरसंहार शुरू कर दिया और इसे आतंकवाद और दाइश तथा अलकायदा के समर्थक कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ लड़ाई का नाम दे दिया ताकि विश्व जनमत को धोखा दिया जा सके।
चरमपंथी बौद्ध समूहों, सेना, सुरक्षा बलों और म्यांमार सरकार के पास रोहिंग्याओं के नरसंहार के बहानों में से एक बहाना वो तथाकथित सशस्त्र समूह हैं जो म्यांमार सेना के अपराधों का जवाब सशस्त्र संघर्ष से दे रहे हैं। ये समूह खुदों को पूर्वी अलकायदा की तथाकथित इस्लामी खिलाफत और दाइश के अंतर्गत मानते हैं और या कम से कम म्यांमार सरकार इन समूहों के बारे में ऐसा दावा करती है, जिसके बहाने वो रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को सही ठहराती है। हालांकि वो इन गुटों के सशस्त्र सदस्यों और आम लोगों के बीच किसी तरह का अंतर नहीं करती।
म्यांमार में खुद को जिहादी गुट होने का दावा करने वाली तीन गुरिल्ला समूह वास्तव में संदिग्ध समूह हैं जो अलकायदा के समर्थन से सेना और सरकारी बलों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। रोहिंग्या राष्ट्रीय मोर्चा, अराकान स्वतंत्रता संगठन और म्यांमार के मुसलमानों की आजादी का संगठन ऐसे महत्वपूर्ण गुट हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा का दावा करते हैं। इन गुटों का दावा है कि वे नरसंहार, निष्कासन, बलात्कार और नरसंहार के जवाब में म्यांमार सेना के खिलाफ हथियार उठाए।
रोहिंग्या मुसलमानों के बीच इन गुटों का कितना प्रभाव है, इस बात के सही आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से अलकायदा और दाइश से इनके जुड़े होने के बारे में भी कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन सशस्त्र गुटों को पीड़ित रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन के दावे के साथ अस्तित्व प्रदान किया गया है ताकि म्यांमार सेना को रोहिंग्याओं के नरसंहार, निष्कासन और उन पर अत्याचारों के लिए बहाना मिल सके।
ज़ायनी शासन के मामलों में ईरानी विशेषज्ञ मोहम्मद रूही का कहना है, ऐसे सबूत मौजूद हैं कि दिखावे के तौर पर रोहिंग्याओं के समर्थक ये सशस्त्र गुट पश्चिमी देशों, कुछ अरब देशों और ज़ायनी शासन की साजिश का नतीजा है। इसका एक सबूत इन गुटों की कार्यशैली और उनके पास इसराइली हथियारों का होना है। वास्तविक इस्लामी विचारधारा रखने वाले कभी भी इसराइली हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोहिंग्याओं का समर्थन करने का दिखावा करने वाले इन गुटों द्वारा म्यांमार के सैन्य ठिकानों पर हमले और उनके नतीजे में म्यांमार में इसराइली सैन्य सलाहकारों की तैनाती, हथियारों की बिक्री और म्यांमार सेना को प्रशिक्षण देना ध्यान योग्य है। सबसे अहम बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों का निर्मम जनसंहार लेबनान स्थित सबरा और शतीला शरणार्थी कैंपों में ज़ायोनी शासन के हाथों फिलिस्तीनियों के जनसंहार की याद दिलाता है।
इन संदिग्ध सशस्त्र समूहों में से एक रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नामक समूह है जिसकी गतिविधियां म्यांमार सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के दमन और जनसंहार के लिए एक अच्छा बहाना बन गई हैं। पाकिस्तान के कराची शहर के एक रोहिंग्या शरणार्थी परिवार में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति ने इस गुट की स्थापना की है जिसने वहां भी शिक्षा हासिल करने के लिए सऊदी अरब का रुख किया था। अताउल्ला अबू अम्मार जुनूनी इस गुट का संस्थापक है और सरगना है। कुछ लोगों का मानना है कि उसके सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते हैं और वास्तव में उस योजना का हिस्सा है जो सऊदी अरब ने म्यांमार सरकार के साथ मिलकर अराकान प्रांत के रोहिंग्याओं को निष्कासित करने और उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए तैयार की है। रोहिंग्याओं के नरसंहार और निष्कासन के लिए सेना और कट्टर बौद्धों को उकसाने में रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी की भूमिका बहुत बड़ी है ताकि सऊदी अरब और यूएई की कंपनियां रोहिंग्याओं की जमीनों में निवेश कर सकें।
अराकान प्रांत में सक्रिय सशस्त्र गुट जो इस प्रांत की आज़ादी का दावा करते हैं या रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू करने का दावा करते हैं, व्यावहारिक रूप से अपने वादों के विपरीत अमल करते हैं और वे रोहिंग्याओं की नस्ल कुशी के लिए भूमि प्रशस्त कर रहे हैं। आतंकवादी गुटों, दाइश और अलकायदा से उनका जुड़ा होना और पर्दे के पीछे से सऊदी अरब और यूएई द्वारा उनका समर्थन इस अनुमान को पुख्ता करता है कि यह पश्चिमी अरबी और ज़ायोनी साजिश है।
दोस्तों, इन्हीं सशस्त्र गुटों ने 2017 में म्यांमार सेना के एक अड्डे पर हमला किया था जिसमें 26 सैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद म्यांमार सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया था। इसी हमले के बाद रोहिंग्या मुसलमानों की बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की गई और लगभग 10 लाख लोगों को भागकर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। इससे ایک ایسا سنکٹ اتپن ہوا جس کا میانمار، بنگلہ دیش اور سنیوکت راشٹر سنگھ کے بیچ سمجھوتے کے باوجود کوئی سمادھان نہیں نکل پایا ہے۔
تو دوستوں، اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران، سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ قرآن قصے۔
متروں، ساپتاہک کاریکرم قرآنی قصے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ قائم رضوی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔ کاریکرم میں ہم سورہ انعام کی آیت سنکھیا 93 کی ویاکھیا پیش کریں گے۔
دوستو، پوتر قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہی اس کے لکھے جانے کی ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا تھا۔ جس کال میں قرآن نازل ہوا، اس دور میں عرب جگت میں شکشت لوگوں کی سنکھیا بہت ہی کم تھی۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بہت ہی کم تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ ان لوگوں کو بلاتے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے پیغمبر اسلام اس آیت کو پڑھتے جو ان پر نازل ہوتی تھی، اور وہ لوگ اسے لکھا کرتے تھے۔ وہی لکھنے والے ان لوگوں کی سنکھیا بہت ادھک نہیں تھی۔ جن لوگوں نے عرب میں پوتر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، ان کو کتب وہ کہا جاتا ہے، ارتھات ایشوریہ سندیش لکھنے والے۔ یہ لوگ اسلامی اتہاس میں اسی نام سے مشہور ہیں۔
جن لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دوسرے انیہ نام بھی ہیں، جیسے عبید بن کعب اور زید بن ثابت۔ ان مشہور ناموں کے اترکت اتہاس کاروں کے انوسار پوتر قرآن کی آیتیں لکھنے والوں میں سعد بن عبید، ابو الدردہ، معاذ بن جبل اور کچھ انیہ نام بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں کے اترکت عبداللہ بن سعد ابی سرح بھی ایک ویکتی ہے جس نے کچھ افسروں پر آیتیں لکھی ہیں۔ یہ ویکتی قرآن کی آیتیں لکھتے سمے اس میں کچھ شبد یا تو ادھر ادھر کر دیتا تھا یا پھر بدل دیا کرتا تھا۔ یہی کارن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدیش سے عبداللہ بن سعد کو اس کام سے ہٹا دیا گیا۔ بعد میں وہ پت بھرشٹ ہو گیا اور اسلام کے ورد دشپرچار میں لگ گیا۔ وہ عثمان کا رشتہ دار تو تھا، کنتو اسلام سے کینہ رکھتا تھا۔ ابھی سرا دکھاوے کے لیے مسلمان بنا تھا۔
پیغمبر اسلام کے کال میں جنہوں نے اپنی پیغمبری کا دعویٰ کیا انہیں میں سے ایک عبداللہ بن سعد تھا جو عرب میں پیغمبر پر آنے والے ایشوریہ سندیش کو لکھا کرتا تھا، پرنتو اس کے وشواسگھات کے کارن پیغمبر نے اسے اس کام سے ہٹا دیا۔ اس نے لوگوں کو ایکترت کیا اور کہنے لگا، میں بھی قرآن کی بھاتی تمہارے لیے آیتیں لا سکتا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام نے بن سعد کو لکھنے کے کام سے ہٹا دیا تو وہ مکے گیا اور وہاں پر جا کر اس نے لوگوں سے کہا کہ محمد پر وحی نازل نہیں ہوتی بلکہ میں ان کو آیتیں بتایا کرتا تھا۔
بعد میں عبداللہ بن سعد ابی سرح نے سوئم کو پیغمبر گھوشت کر دیا۔ اسی دوران پوتر قرآن سورہ انعام کی آیت سنکھیا 93 نازل ہوئی، جس کا انواد ہے، اور اس سے بڑھ کر اتیاچاری کون ہوگا جو ایشور پر جھوٹا آروپ لگائے اور کہے کہ میرے پاس ایشوری سندیش آتا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی ایشوری سندیش نہیں آتا ہے، اور جو یہ کہے کہ میں بھی شیگر ہی اسی پرکار باتیں اتاروں گا جس پرکار ایشور نے اتاری ہیں، اور ہے پیغمبر یدی آپ اس سمے کو دیکھتے کہ جب اتیاچاری مرتیو کی کٹھنائیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی جان نکال دو کہ آج تمہیں ایشور کے پرتی جھوٹا آروپ لگانے اور اس کی آیتوں سے ادنڈتا کے بدلے میں اپمان جنک دنڈ دیا جائے گا۔
سورہ انعام کی یہ آیت کہتی ہے کہ اس پرکار کے جھوٹے دعوے سماج پر کیے جانے والے سب سے بڑے اتیاچار ہیں۔ ایسے اتیاچاریوں کو مرتیو کے سمے سب سے کڑے دنڈوں کا سواد چکھنا پڑتا ہے۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑا اتیاچار سانسکرتک اتیاچار ہے جو کئی پیڑھیوں کی پتبرشتا کا کارن بنتا ہے۔ ہمیں ان جھوٹے دعوے داروں کی اور سے سچیت رہنا چاہیے جو کبھی کبھی دھرم کا چولا اوڑھ کر اپنی پتبرشتا کو سماج میں استھانانترت کر دیتے ہیں۔ اسلامی اتہاس میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرا دشٹ ویکتی بن گیا تھا۔
دوستو، ابی سرح کی دشٹتا کا انومان اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکے پر وجے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ویکتی نے، جو دیا اور کرپا میں سب سے آگے تھے اور جنہوں نے ابو سفیان جیسے پاپی کو بھی معاف کر دیا تھا، یہ آدیش دیا تھا کہ ابی سرح کو جہاں بھی پاؤ گرفتار کر کے سزا دو، چاہے وہ پوتر کعبے کے پردے کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو۔ عبداللہ بن سعد ابی سرح نے جب یہ آدیش سنا تو وہ بھاگ کر عثمان کے گھر میں چھپ گیا۔
پیغمبر کے آدیش کے کچھ سمے کے بعد عثمان نے پیغمبر اسلام سے مل کر سعد ابی سرا کے لیے کھما کی اپیل کی۔ جب عثمان نے ابی سرا کے لیے پیغمبر اسلام سے کھما مانگی تو یہ سن کر انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ عثمان نے جب کئی بار یہ بات دہرائی تو پیغمبر اسلام نے انچھا سے ان کی کھما کو سویکار کر لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورگواس کے بعد عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو مصر کا گورنر نیوکت کیا۔
اتہاس میں ملتا ہے کہ ابی سرا عثمان کے رشتے کا بھائی لگتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ابی سرا ایک دشٹ ویکتی تھا۔ جب وہ مصر کا گورنر بنا تو اس نے لوگوں پر اتیاچار کرنے شروع کر دیے۔ جب ابی سرا کا اتیاچار بہت بڑھ گیا تو مصر واسیوں نے عثمان سے اس کی شکایت کی۔ پہلے تو عثمان نے اس پر کوئی وشیش دھیان نہیں دیا۔ ادھر مصر والوں پر ابی سرا کے اتیاچار بڑھتے ہی جا رہے تھے، جس کے کارن وہاں پر ہاہاکار مچ گیا۔
جب اتیاچار ادھک بڑھے تو مصر سے 70 لوگوں کا ایک دل مدینے میں عثمان کے پاس آیا۔ انہوں نے عثمان سے سعد ابی سرا کو پد سے ہٹانے کی مانگ کی۔ اس بار جب لوگ سعد ابی سرا کی شکایت لے کر آئے تو عثمان نے ان کی بات غور سے سنی اور ان سے پوچھا کہ تم کس کو اس کے استھان پر رکھنا چاہتے ہو۔ سب نے ایک سور میں کہا، محمد بن ابی بکر۔ عثمان نے بن ابی بکر کو گورنر بنانے کا پتر لکھ کر ان کو دے دیا۔ اسی بیچ ایک یوجنا بنائی گئی کہ جو لوگ مصر سے شکایت کرنے کے لیے مدینہ آئے ہیں ان کو وہاں پر پہنچتے ہی ختم کر دیا جائے۔
جب مصر سے آنے والا ششٹ منڈل واپس جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر نے راستے میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار بہت تیزی سے مصر کی اور جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور کافی مشکل کے بعد اس کو پکڑ لیا۔ جب اس گھڑ سوار کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے انہیں ایک خط ملا جس پر خلیفہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پتر کو عبداللہ بن سعد ابی سرح کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ لکھا گیا تھا، پردرشنکاریوں کے پرمکھوں کو پکڑ کر ان کے بالوں اور داڑھی کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پھانسی پر لٹکانے کا بھی اس پتر میں الیکھ کیا گیا تھا۔
اس پتر کو پڑھنے کے بعد مدینے سے مصر جانے والا ششٹ منڈل بہت کرودھت ہو گیا۔ وہ لوگ مصر جانے کے بجائے مدینے واپس لوٹ گئے۔ جب یہ بات خلیفہ کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ مصری لوگوں کو خلیفہ کی بات پر وشواس نہیں ہوا، وہ لوگ بہت کرودھت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پتر کی جانکاری چاہے خلیفہ کو ہو یا نہ ہو، ان کے بھیتر سنچالن کی کشمتا نہیں ہے۔ حالانکہ خلیفہ نے جنتا پر ہونے والے اتیاچاروں کی اور کوئی وشیش دھیان نہیں دیا، جس کا یہ پرینام نکلا کہ ایک اپدرو میں ان کی ہتیا کر دی گئی۔ دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹس پر سن رہے تھے۔ پتر ویوہار کے لیے اور اپنے ای میل بھیجنے کے لیے ہمارا یہ ایڈریس آپ نوٹ کر لیجیے، hindi@www.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstoday.ir/hi۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 0098-9035065-49۔ تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا سمپن ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور ساتھیوں کو انمتی دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.